नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं सचिन गौड़। नए साल में यूएन न्यूज के इस पहले साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, अमरीकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य जनरल के मारे जाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में पसरा तनाव, सभी पक्षों से संयम बरते जाने की अपील। सीरिया में साल बदला लेकिन बच्चों के लिए नहीं बदले हालात, साल के पहले ही दिन रॉकेट हमले में 5 बच्चों की मौत। नव वर्ष शुभकामना संदेश में महासचिव ने अनिश्चितता और असुरक्षा भरी दुनिया में युवाओं को आशा का स्रोत बताया। वैश्विक चुनौतियों के समाधान ढूंढने में सभी की भागीदारी तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई मुहिम। और जानिएगा कि भारत में टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर प्रगति के आकलन में किस तरह मदद करेगा एक नया इंडेक्स। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इराक की राजधानी बगदाद में अमरीकी हवाई कार्रवाई में ईरान के एक सैन्य जनरल की मौत के बाद गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरते जाने की अपील की है। यूएन उप प्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव की ओर से एक बयान जारी कर कहा,
The Secretary General has consistently advocated for de-escalation in the Gulf.
महासचिव ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव की कमी लाने की निरंतर पैरवी की है। हाल ही में जिस तरह तनाव बढ़ा है उससे वो गहरे तौर पर चिंतित है। यह एक ऐसा लम्हा है जब नेताओं को अधिकतम संयम बरतना होगा। दुनिया खाड़ी क्षेत्र में एक और युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान समर्थित इराक के मिलिशिया के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की भी इस हमले में मौत हो गई है। अमेरिका ने उनके कतायब हिजबुल्ला गुट को उस रॉकेट हमले का जिम्मेदार ठहराया है जिसमें कुछ ही दिन पहले इराक में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी। सीरिया के पश्चिमोत्तर में इदलिब प्रांत में बुधवार को एक प्राइमरी स्कूल में रॉकेट हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने नए साल पर एक अपील जारी करते हुए कहा कि देश में युद्ध की समाप्ति ही बच्चों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। सीरिया में हिंसक संघर्ष को लगभग एक दशक पूरा हो रहा है और लाखों की संख्या में बच्चे इसका शिकार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंशु शर्मा।
यूनिसेफ प्रमुख ने कहा कि नए साल का पहला दिन आशाओं से भरा और आगामी वर्ष के लिए खुद को तैयार करने का होता है। सीरिया में परिवारों के लिए उम्मीद की कोई भी किरण दिल दहला देने वाली हिंसा के कारण खत्म हो जाती है। हर दिन 4,500 से ज्यादा बच्चों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है और इनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार विस्थापन का शिकार हो चुके हैं। यूनिसेफ प्रमुख ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2020 उनके लिए शांति लेकर आएगा। साथ ही उन्होंने बच्चों, स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों पर हमलों को रोके जाने की अपील की है। इदलिब में और उसके आसपास हाल ही के हफ्तों में भारी हिंसा में 1,40,000 से ज्यादा बच्चे विस्थापित हुए हैं, लेकिन स्कूलों व अस्पतालों सहित उन बुनियादी ढांचों पर हमले आम बात हो गई है जिन पर आम नागरिक निर्भर है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने स्कूलों पर 145 हमले और अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ पर 80 हमलों की पुष्टि की थी। इनमें से 90% से ज्यादा हमले देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में हुए। सीरिया में जारी हिंसा के अलावा परिवारों को कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके लिए हालात ज्यादा विकट हो गए हैं, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो हिंसा से बचने के लिए घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। यूनिसेफ और उसके साझेदार संगठन जमीनी स्तर पर सीरियाई बच्चों को ठंड के कपड़े, कंबल, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोसामाजिक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि हेनरिएटा फोर ने कहा है कि इन प्रयासों से कई जानों को बचाने में मदद मिल रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों के नवीनीकरण का आग्रह किया है जिनमें पश्चिमोत्तर सीरिया में मानवीय राहत का रास्ता बरकरार रखने की बात कही गई है।
एक ऐसे समय में जब हर तरफ अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल है, विश्व के युवजन ही एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए सभी की उम्मीद का महानतम स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नव वर्ष 2020 के लिए अपने शुभकामना संदेश में ये बात कही है।
This year, my New Year's message is to the greatest source of that hope, the world's young people. From climate action to gender equality to social justice and human rights.
जलवायु परिवर्तन से लेकर लिंग समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, आपकी पीढ़ी अग्रिम मोर्चों पर और सुर्खियों में है। मैं आपके जुनून और दृढ़ संकल्प से प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। यूएन महासचिव के शब्द। उन्होंने अपने संदेश में लगातार बढ़ती असमानता, पनपती नफरत, हिंसक संघर्षों व गर्म होती पृथ्वी को स्पष्ट खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पीढ़ी बने नहीं रह सकते जो पृथ्वी को जलते हुए देखकर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। महासचिव गुटेरेश ने स्पष्ट किया है कि भविष्य को आकार देने में एक भूमिका निभाने की युवाओं की मांग बिल्कुल जायज है और इस जिम्मेदारी को निभाने में वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र आपके साथ खड़ा है और ये संगठन आपका ही है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के भविष्य पर चर्चा में सभी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के इरादे से एक नई मुहिम यूएन 75 संवाद को शुरू किया है। इस मुहिम के जरिए साल भर सुझावों और समाधानों को जुटाकर उन्हें सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में विश्व नेताओं के सामने पेश किया जाएगा। यूएन 75 नाम से शुरू हुई इस पहल को वैश्विक स्तर पर वास्तविकता को परखने का एक ऐसा अवसर बताया गया है जिसमें बेहतर भविष्य के निर्माण से संबंधित बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। शिवानी काला की रिपोर्ट।
दुनिया भर में होने वाले इन विचार विमर्शों को चार अभिनव डेटा स्ट्रीम के सहारे समझने और पेश करने का प्रयास किया जाएगा और पहली बार वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लोगों के सुझावों व समाधानों का संग्रह तैयार होगा। इस मुहिम में एक मिनट का सर्वे होगा, 50 देशों में जनता की राय जानी जाएगी और 70 देशों में पारंपरिक व सोशल मीडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटिमेंट एनालिसिस पूरा किया जाएगा। यूएन 75 संवाद की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और विचार विमर्श के लिए आंकड़ों को जुटाने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश इस प्रक्रिया से जुटाए गए राय मशवरों को विश्व नेताओं और यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 21 सितंबर 2020 को होने वाले एक उच्च स्तरीय आयोजन के दौरान पेश करेंगे। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। यूएन महासचिव ने इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी का आह्वान करते हुए ध्यान दिलाया है कि कोई भी देश, कोई भी समुदाय दुनिया की जटिल समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता है। हमें साथ आने की जरूरत है, न सिर्फ बात करने के लिए बल्कि सुनने के लिए भी। ये बेहद जरूरी है कि आप सभी इस बातचीत का हिस्सा बने। हमें आपकी राय चाहिए, आपकी रणनीति और आपके सुझाव, ताकि हम विश्व के उन सभी लोगों के लिए बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम हों जिनकी हमें सेवा करनी है। सीमाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों से परे जाकर समुदायों के साथ संपर्क साधने के लिए यूएन 75 की टीम संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सहित विभिन्न सेक्टरों में एक व्यापक नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगी। युवाओं और उन समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जिनका यूएन के साथ पहले से संपर्क नहीं है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगले दशक में अगर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के सपने को साकार करना है तो उसके लिए 90 लाख अतिरिक्त नर्सों और दाइयों की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और साझेदार संगठन इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों में और निवेश करने की वकालत करेंगे। पूरी जानकारी अंशु शर्मा के पास है।
नर्स और दाई स्वास्थ्य प्रणालियों की रीढ़ हैं। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और उसके साझेदार संगठन इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों में अधिक निवेश करने की वकालत करेंगे। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के 200 साल पूरे होने पर 2020 को नर्स और दाई के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये उन स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने का एक अवसर है जो दुनिया भर में लोगों को विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। بیماریوں کی روک تھام، ندان اور علاج کے ساتھ ساتھ پرسو کے دوران دیکھ بھال کرنے جیسی وشیشگیہ سیواؤں کے علاوہ نرس اور دائیاں مانویہ آپات ستھتی اور سنگھرش میں پھنسے لوگوں کو بھی سیوائیں پردان کرتی ہیں۔ یو این ایجنسی کے انوسار وشو بھر میں 2,20,00,000 نرسیں اور 20,00,000 دائیاں ہیں، جو ویشوک سواستھ کرمچاریوں کی کل سنکھیا کا آدھا حصہ ہیں۔ حالانکہ نئے دشک کے انت سے پہلے سارومک سواستھ کوریج کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے دنیا کو 1,80,00,000 اترکت سواستھ کاریکرتاؤں کی ضرورت ہوگی، جن میں لگ بھگ آدھی سنکھیا نرسوں اور دائیوں کی ہے۔ ستمبر 2019 میں ایک اچھ استریہ بیٹھک میں وشو نیتاؤں نے سارومک سواستھ کوریج کے وعدے کو مورت روپ دینے کا سنکلپ لیا ہے۔
بھارت میں نیتی آیوگ نے ٹکاؤ وکاس لکشوں کی دشا میں ہو رہی پرگتی کو آنکنے کے لیے ایک انڈیکس کا دوسرا سنسکرن جاری کیا ہے، جسے ایس ڈی جی انڈیا انڈیکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس انڈیکس اور ایک نئے ڈیش بورڈ کی مدد سے آنکڑوں کو آسانی سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وبھن راجیوں کے پردرشن کا تلناتمک ادھیئن بھی کیا جا سکے گا۔ دلی میں انشو شرما نے اس وشے میں زیادہ جانکاری کے لیے نیتی آیوگ میں سلاحکار سنیوکتا سمادار سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ ایس ٹی جی انڈیا انڈیکس کی خاص بات کیا ہے۔
ایس ڈی جی انڈیا انڈیکس لانچ ہوا ہے آج، اس میں نیا کیا ہے اس بار؟
اس سال جو ایس ڈی جی انڈیا انڈیکس اور ڈیش بورڈ ہم نے لانچ کیا ہے نیتی آیوگ میں، اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ 2018 میں جو ہم نے پہلی بار جو یہ انڈیکس لانچ کیا تھا اس سے بہت زیادہ کمپریہنسو اور براڈ بیسڈ ہے۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں گی۔ 2018 کا جو انڈیکس ہے وہ خالی 13 گولز کور کرتا تھا جبکہ 17 گولز ہیں۔ اس بار ہم نے یہ پریاس کیا ہے کہ ادھک سے ادھک ریلیونٹ انڈیکیٹرز لیے جائیں، اس لیے ہم نے اپنے انڈیکیٹرز کی جو بیس ہے وہ 62 سے بڑھا کے 100 تک کر دیا ہے تاکہ یہ سارے گولز کو کور کرے۔ تو ارتھات یہ ہے کہ اس بار کا انڈیکس 1 سے لے کے 16 تک پرتیک گول پہ میجر کرتا ہے کہ ہر اسٹیٹ اور یوٹی میں کتنا پروگرس ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو گول نمبر 17 ہے جو پارٹنرشپس پہ فوکس کرتا ہے اس پہ ایک کوالیٹیٹیو انالیسس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال کا انڈیکس کے ساتھ ایک ڈیش بورڈ بھی، بہت آدھونک ڈیش بورڈ لانچ ہوا ہے جو بہت ہی انٹریکٹیو ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے اور یوزر فرینڈلی ہے۔ اور اس ڈیش بورڈ کے مادھیم سے سب لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور انالیٹکس کر سکتے ہیں کہ کن کارنوں سے کون سے اسٹیٹ میں کیا انتی ہوئی ہے اور کیوں نہیں انتی ہوئی ہے۔
تو یہ ایس ڈی جیز ناپنے کے لیے میتھڈالوجی تو طریقہ ہے، وہ کیا اپنایا جاتا ہے؟
ایس ڈی جیز کو ناپنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک اتنا کمپلیکس ایجنڈا ہے جو 17 سیکٹرز میں پربھاوت ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے میں کو بہت اچھی بہت زیادہ طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں، امپیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے اس کا ظاہر ہے کہ اس کا میجر کرنے کا طریقہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ بٹ ہم نے ایک سمپل طریقہ اپنایا ہے جس میں ہم نے پرتیک گول کے 5-6 انڈیکیٹرز جو ہمارے نیشنل انڈیکیٹر فریم ورک سے ڈیرائیوڈ ہیں ان کو ہم نے لیا ہے، اور یہ انڈیکیٹرز میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی اسٹیٹ لیول ڈیٹا کا، کیونکہ ہمیں اس میں اسٹیٹس کو ماپ رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ لیول ڈیٹا آن دیز انڈیکیٹرز، ان سے ہمیں ایک ڈیسنٹ پکچر ملتا ہے کہ ہیلتھ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا سوچھتا میں ہو، یا کلائمیٹ ایکشن میں ہو، کس طرح کی ہماری ایک امیج نکل کے آتی ہے۔ تو ان انڈیکیٹرز کو لے کے، ان کا ڈیٹا لے کے، پھر ان کو ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ سے جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اس سے ہم اس کو نارملائز کرتے ہیں، اور نارملائز کر کے ایک ڈسٹنس ٹو ٹارگیٹ نکالتے ہیں جو 0 سے 100 کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اس میں جتنے ادھک انک کسی اسٹیٹ کو ملتا ہے اتنا اس نے ٹارگیٹ کی پاس تک اچیو کر لیا ہے، اور اتنا کم ایریا بچتا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ہماری اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہے۔ بٹ اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم جب 2018 کا انڈیکس ریلیز ہوا تھا ہمیں بہت کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ملا تھا فرام بہت سورسز سے، اکیڈمیشین سے، میڈیا سے، جو ہمیں فیڈ بیک ملا تھا ان کو سب ہم نے ان کا سمایوجن کر کے ہماری میتھڈولوجی کو بہت اور روبسٹ کیا ہے اور ساؤنڈ کیا ہے، اور اس میں منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔
تو آج ایس ڈی جی، جیسا کہ آپ نے بتایا، ایس ڈی جی ڈیش بورڈ بھی لانچ ہوا ہے، یہ کس کے لیے ہے اور کس طرح سے یہ ایس ڈی جیز کے امپلیمنٹیشن میں مدد کرے گا؟
رپورٹ آپ کو آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیوں سب کے پاس اتنا نہ سمے ہوتا ہے، نہ اتنا سب کے پاس ریچ بھی نہیں ہوتا کہ رپورٹ پڑھے، اسی لیے یہ تاکہ یہ ادھک سے ادھک پرتیک ناگرک تک پہنچے، جتنے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ورگ ہوں، چاہے وہ اکیڈمیشنس ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی والے ہوں۔ तो एक डैशबोर्ड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप एक क्लिक करने पे ही आपको आंकड़े सामने बहुत सरलता से दिखाई देता है और विजुअलाइजेशंस के माध्यम से आपको प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सरलता से पता चलता है कि कौन से सेक्टर में प्रोग्रेस हो रहा है, कौन से राज्य में बेहतर काम हो रहा है और किन कारणों से अगर कमी है या बेशी है तो किन कारणों से है। इस डैशबोर्ड की खासियत ये है कि ये बहुत सरलता से बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से आधारित जो आंकड़े हैं जो रिजल्ट्स हैं बहुत सरलता से लोगों तक पहुँचाती है और साथ में ये पावर्ड है ताकि एनालिटिक्स करके ये अधिक से अधिक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरलता से लोगों तक पहुंचाए। अब इसकी बेनिफिट ये है कि न केवल जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं चाहे वो भारत सरकार में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में हो और विभिन्न लाइन मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना देख सकते हैं कि कितना उनका प्रोग्रेस हुआ है और कितना और कार्य करने की आवश्यकता है।
नीति आयोग में सलाहकार संयुक्ता समादार से बात कर रही थी अंशु शर्मा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार। Thank you.